uguali.
Ah
già. जब हम साइंस साइंटिफिकली चीज़ों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं या साइंटिफिक मेथडोलॉजी को अपने सामने जो हकीकत है उस पर अप्लाई करते हैं, उसकी एप्लीकेशन करते हैं, तो क्या नतायज पैदा होते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं एक तमसील आपके सामने पेश करता हूँ, एक एग्जाम्पल। ये 19वीं सदी के अंदर एक बच्चे ने, एक 17 साल के बच्चे ने अपनी माँ और बहनों को कत्ल कर दिया। उस बच्चे का नाम था राइवर, फ्रेंच था ये। इस कहानी को जो अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ, किसने मेंशन किया, उसका नाम है मिशेल फूको। मिशेल फूको इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करता है। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम साइंटिफिक मेथडोलॉजी को अप्लाई करते हैं जिंदगी को समझने के लिए, तो उसके नतायज क्या निकलते हैं। ठीक है, तो मिशेल फूको ये बताता है कि उस बच्चे ने जब अपनी माँ और बहन को कत्ल कर दिया, तो उसके बाद उसके ऊपर केस चला। जब उसके ऊपर केस चल रहा था, इस दौरान में उस बच्चे ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी, ऑटोबायोग्राफी उसने लिख दी। ऑटोबायोग्राफी आप समझते हैं ना, सवाने उम्री, अपनी उसने ऑटोबायोग्राफी लिख दी। ऑटोबायोग्राफी जब उसने अपनी लिख दी, तो उसकी ऑटोबायोग्राफी को मुख्तलिफ लोगों ने पढ़ा। राइवर की ऑटोबायोग्राफी को जब आर्टिस्टों ने पढ़ा, आर्टिस्टों ने, तो उन्होंने ये कहा कि राइवर ने फ्रांसीसी अदब का मास्टरपीस प्रोड्यूस किया है, क्योंकि उसने डायलॉग की सूरत में उसे लिखा था, अपनी जिंदगी की कहानी को डायलॉग की सूरत में। तो उन्होंने कहा यह एक फ्रेंच लिटरेचर का मास्टरपीस है। तो उन्होंने कहा कि राइवर कौन है, उन्होंने कहा राइवर एक आर्टिस्ट है। उसी कहानी को हिस्टोरियंस ने भी पढ़ा, हिस्ट्री के जो लोग थे, हिस्टोरियंस ने जब उस कहानी को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि राइवर ने अपनी इस खुद साख्ता सवाने उम्री के जरिए फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के बहुत सारे मसाइल का जवाब दिया है। लिहाजा राइवर को उन्होंने क्या समझा, एक हिस्टोरियन। राइवर कौन है, एक हिस्टोरियन। राइवर की उसी ऑटोबायोग्राफी को लॉयर्स ने भी पढ़ा, कानून के लोगों ने। लॉयर्स ने जब उसकी उस टेक्स्ट को पढ़ा तो उन्होंने ये कहा कि राइवर जो है उसने अपनी इस कहानी के अंदर अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है और इस कहानी के जरिए उसने साबित किया है कि उसने किस तरह प्लान कर अपनी माँ और बहन को कत्ल किया है। लिहाजा ये जो कहानी है ये उसके कत्ल का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, सबूत है, एतराफ है, कन्फेशन है। लिहाजा राइवर को सजाए मौत दी जानी चाहिए। उसी कहानी को साइकोलॉजिस्टों ने भी पढ़ा, नफ्सियातदानों ने। साइकोलॉजिस्टों ने जब उस कहानी को पढ़ा तो उन्होंने ये कहा कि ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने से ये वाजे होता है कि राइवर का जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। राइवर एक जहनी बीमारी का शिकार है जिसे हम कहते हैं डेमेंशिया प्राइकोसिस। की वजह से ये आदमी नॉर्मल नहीं रहा। लिहाजा राइवर को मुजरिम नहीं समझना चाहिए, राइवर का इलाज होना चाहिए। समझे? एक ही चीज को चार मुख्तलिफ उलूम के जरिए चार मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ा गया, चार मुख्तलिफ अकसाम के इल्म रखने वालों से, तो चारों ने एक ही आदमी के बारे में चार मुख्तलिफ आरा दे दी। अब सवाल यह है कि राइवर कौन है? क्या राइवर आर्टिस्ट है, क्या राइवर हिस्टोरियन है, क्या राइवर क्रिमिनल है, या राइवर पागल है? अब राइवर के मुस्तकबिल का फैसला कौन करेगा? राइवर के मुस्तकबिल का फैसला कोई आदमी नहीं करेगा। राइवर के मुस्तकबिल का फैसला करेगा वो इल्म जो सबसे ज्यादा ताकतवर इल्म होगा, जिस इल्म को बरतरी हासिल होगी ना भाई, वो इल्म सच्चा समझा जाएगा और दूसरे इल्म को कुचल देगा वो। इसका क्या मतलब है कि इल्म के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके दरमियान जो ताल्लुक होता है वो मुखासिमाना होता है, एंटागनिस्टिक। ये मुमकिन है कि एक आदमी बैक वक्त आर्टिस्ट भी हो, हिस्टोरियन भी हो और मुजरिम भी हो। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट और हिस्टोरियन जुर्म कर सकते हैं। यह भी मुमकिन है कि एक आदमी आर्टिस्ट और हिस्टोरियन हो और पागल भी हो, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट पागल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे होल्डर पागल हो गया था, तो वो इसने अपने आप को एक गुंबद में बंद कर दिया था, अपने काम कर करके ऊपर से फेंकता रहता था नीचे। और अंदर कोई घुसता उसको काटता था, चक्की मारता था, लेकिन अपना वॉन गॉफ जो था बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, पता है तुम लोग वॉन गॉफ जो था इस हद तक जज्बाती था कि बाज जगहों पे पागल ही लगता है। मसलन ये कि उसकी महबूबा ने एक बार उसके कान की तारीफ की कि मुझे तुम्हारा कान अच्छा लगता है, तो उसने अपना कान ही काट के उसको दे दिया। उसने कहा तुम्हें मुझ में दिलचस्पी नहीं, कान में ये लो कान, अब मेरे से नहीं मिलना। इसी तरीके से तूफान को पेंट करना था तो उसने कहा तूफान को एक्सपीरियंस करते हुए पेंट करूंगा, तो अपने आप को दरख्त से बांध कर तूफान के अंदर खड़े होकर तूफान को पेंट किया। ऐसा पागल था, समझे? तो लेकिन अगर कानून का इतलाक किसी चीज के ऊपर होना है तो वो नॉर्मल आदमी के ऊपर होगा, पागल आदमी पे नहीं होगा। तो अगर आपने ड्राइवर को पागल समझा तो फिर उसके ऊपर कानून का इतलाक नहीं होगा। अगर आपने उसको कानून का इतलाक किया तो आपको उसे नॉर्मल मानना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? साइकोलॉजी में और लॉ में टकराव शुरू हो गया। अब असल में कौन सा इल्म सही है और कौन सा इल्म गलत है, इसका फैसला इस बुनियाद पे होगा कि इंसान क्या है, इसको बताने का हक किसे पहुंचता है? क्या कानून को पहुंचता है या नफ्सियात को पहुंचता है? आपके ख्याल में किसे पहुंचता है इंसान क्या है, ये कौन बताएगा? कानून बनाएगा या नफ्सियात बताएगी? अगर नफ्सियात बताएगी तो कानून को अब नफ्सियात की रोशनी में चलना पड़ेगा। इसका मतलब है कानून नफ्सियात से ऊपर नहीं उठता, नफ्सियात ये बताएगी कि इंसान क्या है। और नफ्सियात चूंकि एक साइंटिफिक नॉलेज है, इसी वजह से इंसान की वो डेफिनेशन जो नफ्सियात बताएगी वो कानून के जरिए इंसानों के ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। और अभी पीछे आपको क्या बता चुका हूं कि साइंस के अंदर जो दावे होते हैं वो हतमी, कतई और फाइनल नहीं होते। लिहाजा आपने साइकोलॉजी की डेफिनेशन के मुताबिक नॉर्मेलिटी की एक डेफिनेशन बता दी, ठीक है? उस डेफिनेशन पर ड्राइवर पूरा नहीं उतरा तो आपने ड्राइवर को एबनॉर्मल कह दिया, ड्राइवर बच गया। लेकिन थोड़े अरसे बाद साइंस में तरक्की हुई और उन्होंने कहा कि भाई वो तो डेफिनेशन नॉर्मेलिटी की ठीक ही नहीं थी, लेकिन ड्राइवर को तो आपने छोड़ दिया ना भाई। बात समझ में आ रही है आपको? अगर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी कैलिफोर्निया, दुनिया का सबसे मजबूत इदारा है साइकोलॉजी में, साइकियाट्री में, सही है? हर साल इंस्टीट्यूट जो है डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी को रिवाइज करता है, यानी कि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हर साल रिवाइज हो जाती है। इसका मतलब है नॉर्मेलिटी के स्टैंडर्ड रिविजन्स होती रहती हैं उनमें। अगर उनमें रिविजन्स होती रहती हैं तो पिछले साल जो लोग उस डेफिनेशन पे पूरे उतरते थे, रिविजन के बाद वो लोग डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतर रहे। और इसकी बुनियाद पे आप कानून साजी पे कानून साजी किए जा रहे हो, बहुत सारे नॉर्मल लोगों को पकड़ के बंद किया हुआ है। ये मुमकिन है ना बेचारे वो पागल ना हो, डेफिनेशन के बदलने से वो ठीक हो गए, डेफिनेशन के बदलने से फिर अंदर फिर बाहर फिर अंदर फिर बाहर। हाँ, तो बताने का मतलब ये कि जब साइंटिफिक उलूम की फौकियत होती है तो उसकी बुनियाद पर वो सिर्फ नजरियात और तहरीरों तक नहीं होते, उसको अप्लाई जब इंसानों के ऊपर किया जाता है तो उसके नतायज पैदा होते हैं। उसके बहुत सारे नतायज में से एक नतीजा कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज है, सही है? तो अब जब क्लास खत्म होने तक हम कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक मेथडोलॉजी की जब आप इंसानियत पर एप्लीकेशन करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा निकलता है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज। देखिए, साइंस के अंदर आपने देखा होगा कि रोज बरोज तेजी से तरक्की हो रही है। तरक्की को हम लोग पसंद करते हैं। तरक्की को जब हम लोग पसंद करते हैं तो हम ये चाहते हैं इसमें और तरक्की हो, और तरक्की हो, और तरक्की हो। तो साइंटिफिक उलूम की में होने वाली तेजी से होने वाली तरक्की ने इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा किया है कि जुज की नॉलेज बे इंतहा बढ़ने के नतीजे में कुल की नॉलेज नामुमकिन होके रह गई है। जुजवी इल्म के बढ़ने से कुल्ली इल्म के बढ़ने के इम्कानात हमेशा के लिए खत्म होते चले जाने, ये इंसानियत के लिए एक ऐसा मसला है जिस जो मुसलमानों के लिए भी मसला हो सकता है, यूरोपियन के लिए भी मसला हो सकता है, सबके लिए मसला हो सकता है। ये क्या मसला क्या है, बात क्या है, इसका इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि 19वीं सदी तक, बल्कि 20वीं सदी की शुरू की दहाई तक, दुनिया में तमाम इंसानों ने मिलकर जो ओवरऑल नॉलेज जमा की होती है उसको डबल होने में अंदाजन कितना वक्त दरकार होता था? 19वीं सदी में यह समझा जाता था कि जितना भी इल्म तमाम इंसानों ने मिलकर जमा किया है उसको डबल होने में 300 साल लगेंगे, ठीक है? ये 19 सेंचुरी में समझा जाता था। अब 21वीं सदी में क्या समझा जाता है? आपके ख्याल में कितना टाइम लगता है दुनिया में जो टोटल नॉलेज है उसको डबल होने में? है भाई, 4 घंटे लगते, 4 आवर्स। 4 आवर्स के अंदर ओवरऑल नॉलेज जो है वो डबल हो जाती है। यानी कि सुबह जब आप लोग निकले थे दुनिया में जो ओवरऑल इल्म था वो अब तक डबल हो चुका होगा। ये है पेस उसके ग्रोथ की। तो नॉलेज इतनी तेजी से जब बढ़ती है तो वो महफूज कहां पे होगी? जहन के अंदर तो महफूज नहीं हो सकती। लिहाजा कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान आलिम होने का दावा नहीं कर सकता, समझे? दुनिया में कोई भी इंसान आलिम होने का दावा नहीं कर सकता। लिहाजा हर आलिम जुज का आलिम होता है, कुल का आलिम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इल्म इतना फैल गया है, इतना बढ़ गया है कि उसका इदराक इंसानी जहन की हुदूद से तजावुज कर गया, ठीक है? तो उसका नतीजा क्या निकला? हम सिर्फ इंसान के जिस्म को ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरे उलूम को अभी हम छोड़ देते हैं, वक्त की कमी है, इसी को अच्छी तरह आप समझ लें। फर्ज किया कि मेडिकल साइंसेस के अंदर बड़ी तरक्की हुई है, सही है? मेडिकल साइंस में जब तरक्की तेजी से हो रही है तो इंसान के जिस्म से मुतालिक उलूम भी बहुत तेजी से बढ़ रहे, ठीक है? तो जो डॉक्टर होता है, क्या हम ये कहते हैं कि उसके पास पूरे इंसान का इल्म है? जैसे कल मैंने आपसे पूछा था कि क्या डॉक्टर जो है इंसान के रूह के बारे में बात करता है, तो आपने कहा था इंसान की रूह के बारे में बात नहीं करता, इंसान के जिस्म के बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि रूह तजर्बे में आती नहीं, ले आता रूह को तो आप निकाल के बाहर डाल दो। अच्छा चले हम जिस्म को ले लेते हैं, क्या जिस्म के बारे में पूरा इल्म होता है डॉक्टर को या नहीं? यस और नो? नो। क्यों नहीं होता? पार्ट्स में होता है। इंसान के जो जिस्म के बारे में ज्यादा बेहतर नॉलेज जिनको रखी जाती है वो जाते हैं स्पेशलाइजेशन में। तो वो क्या करते हैं, पहले कहते हैं मैं साइंटिफिक मेथडोलॉजी इस्तेमाल करूंगा इंसान को समझने के लिए। तो पहला काम वो क्या करता है, इंसान को रूह से अलग कर देता है, दो हिस्सों में बांट देता है। वो कहता है मैं रूह के बारे में बात नहीं करता क्योंकि मेरा इल्म रूह के ऊपर काम नहीं कर सकता, मैं जिस्म पे बात करूंगा, ठीक है? तो कहते हैं अच्छा ठीक है फिर जिस्म पे बात कर लो। तो जिस्म के ऊपर जब वो बात करना शुरू करता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है, वो कहता है कि मैं पूरे जिस्म के ऊपर बात नहीं कर सकता। जर्नल फिजिशियंस पूरी दुनिया में खत्म होते चले जा रहे हैं, लिहाजा वो कोई आई स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई जो है वो ऑर्थोपेडिक बन जाता है, कोई जो है हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट बन जाता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, आई स्पेशलिस्ट बन जाने के बाद भी पूरी आंख को वो नहीं जानता, उसके अंदर मजीद स्पेशलाइजेशन होती है। तो कोई आदमी कहता है मैं कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूं, कोई कहता है मैं आयरिस स्पेशलिस्ट हूं, कोई आदमी कहता है कि मैं जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो वो कोई कहता है कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो फिर हार्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर बात करता है। इसका मतलब ये है कि एक आदमी जो आई स्पेशलिस्ट है, जब वो ये कह रहा है कि मैं आँख के ऊपर बात करूँगा और मैं आँख का ही इलाज करूँगा और साइंटिफिकली आँख का इलाज करूँगा, तो इसका मतलब क्या है? जब उसने मेडिसिन पढ़ी होगी तो पूरे जिस्म को ही पढ़ा होगा ना उसने। फिर उसने बताया कि इंसान के जिस्म के बारे में मालूमात और इल्म इतना बढ़ गया है कि मैं अहाता नहीं कर सकता उसका, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इंसान की आँख पे तवज्जो दूंगा, ठीक है, मैं इंसान की आँख पे तवज्जो दूंगा, मैं इंसान की आँख का इलाज करूँगा। तो जब उसके सामने एक इंसान आता है तो उसके नजदीक इंसान क्या होता है, है? एक आई स्पेशलिस्ट के लिए इंसान क्या है? इंसान एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक ऐसी चीज लगी हुई है जिसके बारे में उसे पता है। He will focus on your eye. That's it. इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो तुम्हारे कुल के बारे में कुछ नहीं बता सकता, जुज के बारे में बताएगा, ठीक है? अच्छा, इसके नतीजे में इससे एक और बात भी निकलती है कि आई स्पेशलिस्ट कहता है कि मैं तुम्हारी आंख ठीक कर सकता हूं, आंख का मुकम्मल इलाज कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है? है भाई, अगर वो कह रहा है मैं आंख का मुकम्मल इलाज कर सकता हूं, इसका क्या मतलब है? हैं? बाकी चीजों का मैं नहीं कर सकता, ये कौन था, ये कौन कह रहा था, ये वो है क्या भाई? दे दो भाई वहां, ये तो सही है, तो मैंने बता दिया कि वो उसने आग के बारे में, नहीं नहीं वो तो सही है, आग का इलाज करेगा, लेकिन आग का इलाज जब वो करेगा तो वो आग तो जिस्म के अंदर लगी हुई है ना भाई आपके, तो उससे कोई मसला पैदा हो सकता है या नहीं? क्या मसला पैदा हो सकता है? अच्छा, मैं तुम्हारा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। फर्ज किया आप किसी डॉक्टर के पास गए, आई स्पेशलिस्ट के पास, और डॉक्टर के पास जाके कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो क्या कहेगा आपसे? हैं? वो दे दो ना उनको, कोई भाई बोलना चाह रहे हैं तो बताओ, हाँ हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ, हाँ दे दो भाई इनको, दे दो, हाँ लो लो, हाँ सही है। एक तो वो ये वो कह देगा, ये तो उन्होंने बताया, वो ये कहेगा कि मैं आँख का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि तुम्हारी आंख का और तुम्हारे पेट का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जब पूरी आंख का इलाज करूंगा तो उसका कोई असर तुम्हारे पेट पे नहीं पड़ेगा। क्या वो ये कह सकता है? क्या उसे ये कहना चाहिए? हो सकता है आंख का पेट के साथ ताल्लुक हो लेकिन उसे पता ही ना हो, क्योंकि उसने स्पेशलाइजेशन आंख के ऊपर की है लेकिन पेट के बारे में उसे पता नहीं है। ये मुमकिन है कि आंख का इलाज इतनी अच्छी तरह करे कि उसके नतीजे में पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आपको मुख्तलिफ खानों के अंदर बांट दिया गया है और आपको यह भी बताता है साइंटिफिक मेथडोलॉजी कि आपके एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस हिस्से का इलाज करूंगा, यह हिस्सा ठीक हो जाएगा, लेकिन इस पूरे अमल के नतीजे में दूसरे हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसे हम कहते हैं ऑर्गन्स विदाउट बॉडी। एक आदमी है, उसका नाम है डिल्यूज, वो कहता है साइंटिफिक मेथडोलॉजी तुम्हें क्या एहसास दिलाती है, तुम ऑर्गन्स हो विदाउट बॉडी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऑर्गन्स का मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से इलाज करते हैं और तुम्हारे पूरे जिस्म का इलाज कोई नहीं करता, तुम्हारे पूरे वजूद को कोई नहीं समझता। तो तुम्हारे पूरे वजूद को जब वो नहीं समझता तो तुम फिर असल में उस इंसान के लिए क्या हो? पार्ट्स हो तुम। यू आर नथिंग, जस्ट पार्ट। तुम आंख हो, उसको एक अलग देखेगा, तुम एक जबान हो, उसको कोई और देखेगा, तुम एक भेजा हो, उसको कोई और देखेगा, तुम्हारे लंग्स हैं, उनको कोई और देखेगा, लेकिन ये तमाम उलूम को मिलाकर सिंथेसाइज करने वाली कोई एक हस्ती तो मौजूद है ही नहीं। और कोई कहे कि साइंटिफिक नॉलेज, तो साइंटिफिक नॉलेज तो तज्जिया करके हकीकत को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटती चली जाती है, लेकिन हकीकत के कुल का तजर्बा कोई भी नहीं करता। नतीजा ये होता है कि तुम एक पार्ट से का मसला हल करते हो, दूसरे पार्ट के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता और दूसरा पार्ट उससे अफेक्ट हो जाता। पहले जमाने में कुछ लोग होते थे जो कहते थे कि नॉलेज के हर हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ नेसेसरी रिलेशनशिप होता है। जब तुम एक हिस्से को छेड़ते हो तो दूसरा हिस्सा भी मुतासिर हो जाता है। आलिम के लिए जरूरी है कि वो सबको जानता हो तभी छेड़े, वरना मत छेड़ो। दुनिया भर में एक प्रॉब्लम है जिसे मेडिकल साइंसेस में कहते हैं आयोट्रोजेनेसिस प्रॉब्लम। आयोट्रोजेनेसिस प्रॉब्लम, आयोट्रोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके नतीजे में आप बीमारियों का शिकार होते हैं इलाज की वजह से। ये इसलिए होता है कि हम जिस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं वो प्रॉब्लम हम हल करते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेस कहां पर हुए हैं उसके नतीजे में मुस्तकबिल में जो प्रॉब्लम होगा उसको फिर बाद में देखेंगे। तो एक तरीका इलाज से दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे तरीका इलाज से तीसरा प्रॉब्लम, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो मेडिकल साइंसेस का ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे मेडिकल साइंसेस देख रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इलाज वगैरह ना करवाओ, हम मेथेडोलॉजी की बात कर रहे हैं। मेथेडोलॉजी का मसला ये है कि हकीकत को जब आप मुख्तलिफ खानों में बांट देते हैं तो कुल के बारे में कोई राय देने के काबिल आप नहीं रहते। तो जब आप कुल के बारे में राय कायम नहीं करते तो जिंदगी जो आप गुजार रहे होते हैं वो पार्ट्स में तो नहीं गुजार रहे होते हैं ना, कुल के साथ गुजार रहे होते हैं ना, या आंखों को रख के चले जाते हैं कि भाई ऐसा है ना, आंख जो है ना खराब हो जाती है ज्यादा, तो ऐसा करता हूँ एक आंख निकलवा के रख देता हूँ, एक आंख से गुजारा करते हैं थोड़े दिन, उसके बाद फिर दूसरी आंख लगवा लें जब पहली आंख खराब हो जाए, या बैंक में जमा करा दें, बैंक में रखवा दें, सब लोग अपनी एक एक आंख एक एक गुर्दा बैंक में रखवा के आ गए, एक फेफड़ा, फिर जब बूढ़े होने लगे फिर दूसरा लगवा लिया। हाँ, तो आप ऐसा तो नहीं करते ना भाई, आप पार्ट्स में तो जिंदा नहीं हो, आप तो कुल में जिंदा हो, लेकिन जो इल्म आपको बता रहा है वो आपको पार्ट्स में अंडरस्टैंड कर रहा है। ये मसला क्या हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता? तो साइंटिफिक मेथडोलॉजी यकीनन आपके मसलों को हल करती है, लेकिन वो आपको कंपार्टमेंटलाइज कर देती है, पार्ट्स में ब्रेक कर देती है। जब आप पार्ट्स में ब्रेक होकर अपने मसाइल को हल करते हैं तो आपके जो कुल के मसाइल होते हैं वो हल नहीं होते। कुल के मसाइल को हल करने का जवाब कौन देता है? मजहब देता है, क्योंकि मजहब आपको पार्ट्स में ब्रेक नहीं करता, मजहब आपको पूरा का पूरा लेता है, पूरा का पूरा। इसलिए अल्लाह ताला आपसे कहता है उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पूरे के पूरे दाखिल हो, जुज को नहीं पकड़ो। जुज को पकड़ोगे और कुल को छोड़ोगे, नहीं छोड़ूंगा फिर मैं तुम्हें। तो आप आंखों के ऊपर अगर अथॉरिटी हो और आप कहते हो मैं आंखों का मसला हल कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारा गला किस तरह काम करता है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं आंखें एक अलग चीज में लगी हुई है और गला एक और चीज में लगा हुआ है और इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी वाजे कंपार्टमेंटलाइजेशन भी आपको दिखाई नहीं अगर दे रही जो रोजाना आपके साथ हो रहा है। आपको पता है कि जब आप जर्नल फिजिशियंस के पास जाते हैं तो वो आपको ज्यादा इफेक्टिवली आपका मसला हल करता है। क्यों? क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है, आंख का भी पता होता है, नाक का भी पता होता है, गले का भी पता होता है, हड्डी का भी पता होता है। जर्नल फिजिशियंस दुनिया में कम होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कहते हैं स्पेशलाइज नहीं है, ये स्पेशलाइज नहीं है, तो हम एक जर्नल फिजिशियन को छोड़ के स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। स्पेशलिस्ट के पास जब जाते हैं तो वो स्पेशलिस्ट उस स्पेसिफिक एरिया को ही ट्रेस करता रहता है, बाद में बताता है कि इस आदमी को ये प्रॉब्लम था ही नहीं, कोई और प्रॉब्लम था। लेकिन जर्नल फिजिशियन जो होता है वो फौरन डिटेक्ट कर लेता है। आपने देखा होगा कि वो डॉक्टर जो कि सीनियर डॉक्टर है, जो बड़े डॉक्टर थे, अब तो ये बूढ़े हो रहे हैं, ये जर्नल फिजिशियंस जो होते थे ये आपको ज्यादा दौड़े नहीं लगवाते थे, ज्यादा भागते नहीं थे, ज्यादा मशीनों पे डिपेंड नहीं करते थे। सही है? हमारे जानने वाले उनको चेस स्पेशलिस्ट के पास लेके जाया जा रहा था मुस्तकिल और मुसलसिल, और उनके पेट में तकलीफ भी थी, तो वो जाते थे या तो चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास या वो जाते थे स्टमक स्पेशलिस्ट के, एब्डोमिनल। ये एक बार हम उनको लेके चले गए जर्नल फिजिशियन के, पुराना डॉक्टर है बड़ा, उसने उसको लिटाया और हाथ से उसके बॉडी को उसने चेक किया और उन्होंने कहा इसको अपेंडिसाइटिस है। अब अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है वो नीचे की तरफ होता है, उसको यहाँ पे पेन होता था। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब इसको तो यहाँ पर होता है पेन। बोले रहे इसको यहाँ पे पेन इसलिए होता है कि इसकी जो बॉडी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, एक्सीडेंट के बाद डी शेप हो गई थी, तो ये इस पैर पे ज्यादा जोर दे के चलता है, जिसकी वजह से इसकी आंतें अंदर को मुड़ी हुई हैं, तो उसको पेन महसूस होता है इधर, लेकिन हो इधर ही रहा है, तो उसकी बॉडी की वजह से है। 6 महीने से डॉक्टर उसको चक्कर लगवा रहे थे, उसने 10 मिनट के अंदर डिटेक्ट कर लिया, 10 मिनट में जाके डिटेक्ट किया, जाके टेस्ट वेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला कि भाई उसको तो अपेंडिसाइटिस है। ऑपरेशन हुआ, ठीक हो गया। वो जर्नल फिजिशियन जो था उसने कोई टेस्ट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? पूरी बॉडी को उसने देखा, उसने ये देखा कि बॉडी डी शेप है इसकी, तो जहां पर अगर तुम्हारी बॉडी नॉर्मल बॉडी नहीं है तो जरूरी नहीं कि जहां पे पेन होना चाहिए वहीं पे ही हो, जैसे हमारे यहाँ फिल्मों में दिखाते हैं कि बाप को अपनी निकम्मी और नालायक औलाद का रिजल्ट देखने के बाद दिल का दौरा पड़ता है, तो दिल का दौरा जब पड़ता है तो एक्टर जो शो ड्रामे करते हैं वो कहाँ पे पकड़ते हैं दिल, यहाँ है दिल का दौरा जब पड़ता है यहाँ पे दर्द होता है भाई, बीच में होता है दर्द, लेकिन फिल्म में कभी यूं नहीं, यहाँ पर पकड़ते हैं क्योंकि उनको कभी हुआ नहीं है ना दर्द। सब एक्टिंग करते हुए यहाँ पे पकड़ते हैं, यहाँ पर होता है दिल का दर्द। अच्छा चलो, आपने कहा भाई अब मैं ड्रामे जब मैं एक्टिंग करूँगा तो मैं यहाँ पकड़ूंगा, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नहीं होता, फिर पेट में होता है, तो आप कहते हैं चूरन खा लो अम्मा, चूरन खा लो, ये खा लो, वो खा, अम्मा को हार्ट अटैक हो रहा है, औलाद को पता नहीं क्योंकि उन्होंने फिल्म में यही देखा है ना, सब लोग यूँ ही पकड़ते हैं, सब लोग यूँ पकड़ते हैं, अम्मा को चूरन खिला खिला के ले गए तो होता है गैसेस हो गए थे, अम्मा को गैसेस हो रहे थे, ये हम चूरन खिलाते रहे, करप्शन खिलाते रहे, ये खिलाते रहे, और अम्मा का दिल बंद हो गया। उन्होंने कहा भाई हार्ट अटैक जो होता है पीठ में भी होता है दर्द, पेट में भी होता है दर्द, तो जनरल फिजिशियंस जो होते हैं वो बताते हैं कि भाई पेन जो है वो किसी एक मखसूस जगह पे नहीं होता। अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेशलिस्ट, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, और जब आप एक स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं तो वो कहता है कि इसका मतलब है सारे मसाइल इनको पता चल गए, अब असल मसला मेरा काम है कि इनके हार्ट को ही ठीक करना है, हार्ट का मसला हो या ना हो हार्ट को छोड़ूंगा नहीं मैं, कुछ ना कुछ तो करूंगा अब इसके हार्ट के साथ। तो आइडियल ये है कि आपने उसको पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया, अब आप इंसान के जिस्म को लेके पूरी रियलिटी को ले लें। एक सोशियोलॉजिस्ट क्या कर रहा है, माशरे को अंडरस्टैंड करता है वो, एक इकोनॉमिस्ट क्या करता है, इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करता है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करता है, इंसान को ले लेता है, एक क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, साइकी को ले लेता है। अब सवाल यह है कि एक मसला इंसान के साथ हुआ है, उसको सोशियोलॉजिस्ट जब देखेगा तो माशरे के पर्सपेक्टिव में देखेगा, उसी मसले को इकोनॉमिस्ट देखेगा तो इकोनॉमी की बुनियाद पे देखेगा, उसी मसले को एक साइकोलॉजिस्ट देखेगा तो माइंड की बुनियाद पे देखेगा। सवाल यह कि उसकी वजह क्या है, तो कंपार्टमेंट में ब्रेक कर दिया आपने, सब सही कह रहे हैं लेकिन आधा सच कह रहे हैं। कुल के बारे में कोई कुछ नहीं बताता, कुल के बारे में कोई भी जब कुछ नहीं बताता तो कुल्लियतन तुम्हारा मसला हल कौन करेगा, कुल का मसला तो वही हल करेगा जो तुम्हें कुल के बारे में कुल्ली तौर पे जानता हो, लेकिन जो तुम्हें कुल्ली तौर पे जानता था अल्लाह ताला, उसकी तो तुम सुनते ही नहीं, उसका मजाक उड़ाते हो, पैगंबरों का मजाक उड़ाते हो, कुरान का मजाक उड़ाते हो, तफसीर का मजाक उड़ाते हो, आइम्मा का मजाक उड़ाते हो, आइम्मा अथहार का मजाक उड़ाते हो, उड़ाते कि नहीं उड़ाते, सूफिया का मजाक उड़ा, किसका मजाक नहीं उड़ाया। इसका मतलब यह है कि अगर एक आदमी साइंस को अच्छी तरह जानता है तो वो ये नहीं कहेगा कि साइंस का इल्म नहीं हासिल करो, लेकिन उसकी नजर में वो कमजोरियां भी आएंगी और उन उलूम को भी वो जानने की कोशिश करेगा जिन उलूम के बारे में उसका खालिक कहता है कि ये मैं हूं, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, ये मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिस तरह उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो पूरे कुल की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, पूरे के पूरे इंसान के बारे में बता रहे हैं, बहसियत जिस्म, बहसियत रूह, बहसियत नफ्स, बहसियत उम्मती, बहसियत फर्द, बहसियत सोल्जर, पूरा इंसान। आपको नहीं ये तो साइंटिफिक नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ साइंटिफिक, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप साइंटिफिक नॉलेज हासिल ना करें, डॉक्टरों का एहतराम ना करें, वकीलों का एहतराम ना करें, या सोशियोलॉजिस्टों को जूते मारें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये बता रहा हूँ ये भी उलूम है, इस्लाम भी एक इल्म है, अगर आप इस इल्म को रिस्पेक्ट करते हैं उस इल्म को भी रिस्पेक्ट करें भाई। अगर आप इस्लाम के बारे में तनकीदी नजर रखते हैं तो साइंस के बारे में भी तो तनकीदी नजर होनी चाहिए ना। ये किस किस्म की तनकीद है जो इस्लाम और सहाबा और ताबईन और उलमा के ऊपर तो हम उठाते हैं और उनकी दाढ़ियां हम खींचते हैं, लेकिन साइंटिस्टों के इल्म के ऊपर बात करते हुए रूह फना हो जाती है। क्यों भाई? उस इल्म के बारे में भी तो क्रिटिकल होना चाहिए। एक इल्म, अगर आप एक आलिम हैं और आपका रवैया आलिमाना है, तो आप अगर नकाद हैं, नक्द करते हैं, इस्लाम पे नक्द करते हैं, उलमा पे नक्द करते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, इनको तो ये पता ही नहीं है हार्ट अटैक कैसे होता है। बताएं मौलाना साहब हार्ट अटैक कैसे होता है? वो कहेंगे भाई हार्ट अटैक तो मुझे नहीं पता, लेकिन हार्ट अटैक के बाद क्या होता है ये मैं बता सकता हूँ। हार्ट अटैक से पहले क्या होता है और हार्ट अटैक के बाद में क्या होता है मैं बता सकता हूँ तुम्हें, समझे? तो हम एक जगह हम डिस्कशन कर रहे थे, तो एक साहब बड़े अजीम आदमी थे, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, तो उनसे मैं उमूमन बहस नहीं करता, मैं लोगों की बात सुनता हूँ खामोशी से, ज़्यादा बहस नहीं करता। तो वो मैं खामोशी से उनके इल्म के मोती समेटे जा रहा था मैं, तो उनको ये शक था कि मैं उन्हें बेवकूफ़ समझ रहा हूँ। उनका ये ख्याल था कि मैं उनसे बात नहीं कर रहा तो मैं उन्हें बेवकूफ़ समझ रहा हूँ। तो बोले कि आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे? मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप मुझे ये बताएं कि इस्लाम ने अगर इंसानों के तमाम मसाइल को हल पेश किया है तो फिर लोग जो है मुस्लिम माशरों में इतने मसाइल क्यों हैं? तो वाहिद हल ये है कि हम मुस्लिम माशरों को साइंसी बुनियादों पे समझें, क्योंकि साबित हो चुका है कि इस्लाम मसाइल का हल पेश नहीं करता। तो मैंने कहा भाई क्या साइंस मसाइल का हल पेश करती है? क्या साइंस ने मसाइल का हल पेश कर दिया है या नहीं? तो उन्होंने कहा जी साइंस की नतीजे में तरक्की हुई है, साइंस के नतीजे में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता है 2009 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। 2009 के दिसंबर में दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई कोपेनहेगन में, और उसमें दुनिया के तमाम बड़ी रियासतों के हाकिम, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या प्रेजिडेंट्स हों या किंग हों, वो सब उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैथमेटिशियंस थे, फिजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, फलसफी थे, और उसको हेड कर रहा था जो है एक मुल्क का वजीर आजम। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये बताया कि दुनिया के अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट के नतीजे में जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है उसके नतीजे में 2050 तक दुनिया में इतने ज़बरदस्त किस्म के क्लाइमेट चेंज होगी कि तमाम इंसान मारे जाएंगे, तमाम इंसान 2050 तक उस नेचुरल डिजास्टर्स के जरिए मारे जा सकते हैं। अगर बच गए तो ये मिरेकल होगा, और साइंटिफिकली तमाम प्रोजेक्शंस के जरिए उसने बताया। और उसने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट दीज आर नॉट द प्रेडिक्शंस, दीज आर द प्रोजेक्शंस। प्रेडिक्शंस और प्रोजेक्शन में फर्क ये होता है कि वो ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट की जाती है, ठीक है? कि अगर हम ये बता रहे हैं कि आप इस मकाम से इस मकाम पे पहुंचे तो कितना वक्त लगेगा, ये प्रिडिक्शन नहीं है, प्रोजेक्शन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका फिर साइंस क्या हल पेश करती है। उन्होंने कहा भाई साइंस इसका ये हल पेश करती है कि कम से कम आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। अगर आपने ये कम कर लिया तो उसके नतीजे में इंसानों को 50 साल और मिल जाएंगे, तो हम इंसानों की फलाह और बहबूद के लिए कुछ करने का वक्त हमारे पास बढ़ जाएगा। तो साइंस ने बता दिया ना भाई आपको ये, तो क्या आपने मान ली ये बात? जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि भाई हम साइंस की बात मानते हैं, तो साइंस ने बता दिया ना भाई आपको, अब मान लो। उस ट्रीटी के ऊपर किसी मुल्क ने सिग्नेचर नहीं किए, किसी मुल्क ने सिग्नेचर नहीं किए। क्यों? उन्होंने कहा कि अगर हमने इस पे साइन किया तो हमें अपनी इकोनॉमिक प्रोडक्शन को स्लो करना पड़ेगा। अगर हमने अपनी इकोनॉमिक प्रोडक्शन को स्लो किया तो उसके नतीजे में हमें पर ईयर $30 बिलियन का नुकसान होगा, $30 अरब का नुकसान होगा सालाना। तो हमें सालाना $30 बिलियन दे दें तो हम बंद कर देते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो ग्लोब का मसला है। तो मैंने ग्लोब का सबका मसला है, कुल का मसला है। तो उन्होंने कहा कुल के मसले के लिए हम अपना जूस का मसला थोड़ी पैदा करेंगे, बाहर में जाओ, हम तो नहीं कर रहे। सब मरेंगे तो ठीक है, हम भी मर जाएंगे, हम तो ये बंद नहीं कर रहे। चाइना और इंडिया दोनों ने ये पोजीशन ली कि ठीक है हमें $30 बिलियन ईच दे दें आप, यानी कि $60 बिलियन दे दें तो हम ये बंद कर देते हैं, वरना हम ये बंद नहीं करेंगे, दुनिया तबाह होती है तो हो जाए। दुनिया में पोल्यूशन क्रिएट करना, गंदगी पैदा करने वाले मुमालिक में पाकिस्तान का नंबर है 165। पाकिस्तान ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, लेकिन दुनिया में जो पोल्यूशन पैदा हो रहा है उसके जरिए जो मुतासिर होने वाले जो मुमालिक हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर छठा है। हम पैदा नहीं कर रहे, हम गंदगी नहीं पैदा कर रहे, हमारे पास इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं है। पाकिस्तानी इकोनॉमी एग्रो बेस्ड है या सर्विस इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन नहीं, हम लोग सिर्फ वो प्लास्टिक की थैलियाँ वो घुमा घुमा के अपने ही घर के आगे फेंकते रहते हैं, ज़्यादा कोई गंदा काम हम हमारा वो कहते हैं अपना मौलाना रूम, कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, जो दरवेश का जो कहर होता है ना वो अपने ही ऊपर गिरता है। आपने देखा है कि किसी आदमी कोई आदमी अपनी बीवी से ज्यादा झगझग करे, बीवी अपने आप को पीटना शुरू कर देती, अपने आप को ही मारना शुरू कर है? और बीवी को अपने आप को मार रही है तो उनका है मेरी बीवी अपना, उन्होंने भी अपने आप को मारना है, दोनों अपने आप को खूब मार मार के सो जाते। ये सूफिया की खसूसियत। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में सफाई करके सारी गंदगी लाके अपने ही घर के आगे रख देते हैं। कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, हम कोई इस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं फेंकते हवा के अंदर जैसे अमेरिका फेंकता है। अमेरिका के अंदर जो टोस्टर होता है ना, टोस्टर आपको पता है क्या टोस्टर कैसी मशीन है? हैं? टोस्टर का क्या काम होता है? हैं? जोर से बोलो भाई। नहीं, वो करता क्या है? ब्रेड सेकता है। हम जो दो भाई थे, हम चार भाई बहन है, लेकिन हम जो दो थे हमारे में एक एक साल का फर्क था, तो हम दोनों फ्रेंड भी बहुत ज्यादा थे, साथ मिलके जो भी बदमाशी की है मिलके ही की है। तो वो जो हमारा भाई था खाने पीने का बहुत शौकीन था, एक साल मेरे से बड़ा था, तो हमारे घर में टोस्टर आया गया, लेकिन वो टोस्टर घर के इस्तेमाल के लिए नहीं था, बहन के जहेज के लिए था। बहन जो भी आ जाता वो बहन के जहेज के लिए रख दिया जाता था, और हम सब देखते थे और एक दिन उसको बड़ा गुस्सा, उसने कहा ये क्या बात, जो भी चीज़ आती है उसमें रख देते हो और हम हमारे साथ इस्तेसाल हो रहा है और हम लोग इस साइंटिफिक डेवलपमेंट से फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते। उन्होंने खूब एहतजाज किया और उन्होंने कहा ये खोलें, ये इस्तेमाल होगा, ये होगा, वो होगा। तो अम्मा ने वो खोल दिया, टोस्टर खोल दिया उन्होंने। तो वो बड़े खुश हुए कि आपको ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हम लोगों को खाने को मिलेगी, बहुत कोई अजीम चीज़ होगी, मशीन के अंदर डालें क्या पता नहीं क्या निकलेगा। तो उन्होंने, हमारे यहाँ तो पराठे और रोटी बनती थी और रात का सालन हम तो इस तरह खाते थे खाने, तो डबल रोटी हमारे यहाँ एक वो था, कोई इंसेंटिव वगैरह आ रहा है, कोई नई चीज़ हो रही है। तो डबल रोटी मंगवाई गई और डबल रोटी को उसके अंदर डाला गया और डबल रोटी उसमें ठक करके बाहर निकली और वो अम्मा ने रख दी साहब। तो उसने कहा ये क्या है? ना भाई ये यही काम करती है, बिला वजह तूने डब्बा भी खुलवा दिया और जो है अब खाओ, मैं देख रही हूँ खाओ। तो उसने कहा भाई इसमें किया क्या है आपने? तो यही हो, ये यही करती है मशीन। तो उन्होंने टोस्टर का एक नाम रखा, छोटे थे वो, उन्होंने टोस्टर का नाम रखा डबल रोटी को पापा बनाने वाली मशीन। कहा तो बिल्कुल थर्ड क्लास मशीन है, डबल रोटी को पापा बना दिया, हम डायरेक्ट पापा ले लें। और उन्होंने बहुत कंडेम किया, उन्होंने कहा इसको डब्बे को बंद करके रख दें, ये बहन को ही दे दें, हमें नहीं चाहिए। और उन्होंने फिर उसको डब्बे में रख के उसको टेप वेप ला के पैक करके दे दिया, जो मेरी बहन ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, अभी तक उसके वहाँ वैसे ही रखा हुआ, शादी हो गया, जमाना हो गया। अब मेरे ख्याल में अगर उसको चलाएंगे भी तो वो नहीं चलेगा। इस तरह होता है, जहेज का सामान इसलिए दिया जाता है कभी इस्तेमाल ना करो। जिस तरह जहेज के बर्तन होते हैं वो ला के रख दिए जाते हैं कि वो टूट ना जाए, टूट ना जाए, टूट ना जाए, टूट ना जाए, सब टूटते जाते हैं, बर्तन सलामत है। क्योंकि अगर बर्तन टूट गया तो दिल में खलिश आ जाती है कि मेरी माँ के दिए हुए बर्तन तोड़ दिए, इस घर में मेरी ये औकात है, इस बर्तन से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, समझे? तो डबल रोटी को जो पापा बनाने वाली मशीन है, मैं बताऊं वो क्या कर रही है दुनिया में। अमेरिका में टोस्टर जो होता है, इसको चलाने के लिए, सिर्फ टोस्टर को इस्तेमाल करने के लिए जो बिजली कंज्यूम होती है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि अमेरिका के अंदर जो बिजली बनती है कोयले के जरिए बनती है, कोयले को जला के। तो जब कोयले को जलाया जाता है तो उससे अनबर्न कार्बन एनवायरनमेंट में जाता है, ठीक है? तो टोस्टर को चलाने के लिए जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे जितना अनबर्न कार्बन एयर में शामिल होता है, अमेरिका में भूटान जैसे 7 मुल्क जितना पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं ना, वो सिर्फ टोस्टर चलाने के नतीजे में पैदा होने वाले पोल्यूशन के बराबर है। 7 मुल्क मिलके जितनी गंदगी करें ना, और एशियन कंट्री है, जैसे एशियन कंट्री हो, गंदगी पैदा करने का बड़ा शौक होता है। तो भूटान छोटा मुल्क है, लेकिन भूटान जैसे 7 मुल्क मिलके पूरे साल में जितनी गंदगी फैलाते हैं, अमेरिका के अंदर एक साल में टोस्टर जलाने से उतना पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तो लोगों ने अमेरिकन से ये कहा कि भाई ये अपना पोल्यूशन कंट्रोल करो। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा वी आर द मोस्ट सुपीरियर नेशन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ बिकॉज वी कंज्यूम द मोस्ट टेक्नोलॉजी, हाईली टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सोसाइटी। हम दुनिया की सबसे अजीम सिविलाइजेशन इसलिए हैं कि हम हर काम टेक्नोलॉजी के जरिए करते हैं। तो एक अमेरिकन एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, आप लोग शायद जानते हो, उसका नाम है एल्गोर इलेक्शन में हार गया था। हकीकतन इलेक्शन में वो जीता था, लेकिन रिगिंग किया करके उसे हरा दिया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे काम नहीं करना चाह रहा था जो उससे करवाया जा रहा था। एल्गोर जो है उसने कहा कि भाई तुम कह रहे हो कि तुम सुपीरियर तरीन नेशन हो दुनिया की, हकीकतन दुनिया में सबसे ज्यादा, ये क्यों नहीं कहते कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करने वाली कंट्री होगी, जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी वही प्रोड्यूस करेगा। तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह लोग रिलीजन को कंडेम करते हैं ना कि देखें मजहबी लोगों के वजह से ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, तो भाई अगर आप इस पर तनकीदी नज़र रखते हैं, मजहबी लोगों को मसाइल नहीं पैदा करने चाहिए, लेकिन साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसने भी तो मसाइल था, उसके बारे में भी तो तुम्हें तनकीदी नज़र रखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कम करना चाहिए ना थोड़ा। हम तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को काबिले फ़ख्र अंदाज में किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं जब वहाँ गया तो उसने कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम्हारी जो वो थी प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन जो है वो तुम जो है वो अपने लैपटॉप से करोगे या। मैंने कहा भाई मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं है, मैंने लैपटॉप नहीं है तुम्हारे पास, बोला अच्छा तो फिर मोबाइल। मैंने कहा मेरा मोबाइल तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ तशरीफ लाए थे उस वक्त था, उस वक्त का है ये, तो इसके ज़रिए ये नहीं है सलाई। तो बोलने की अच्छा तो फिर ऐसा करो कि तुम ये मेरा लैपटॉप ले लो और उसमें ही कर। मैंने कहा मुझे तो ये करना ही नहीं आता, मेरे तो असिस्टेंट होते हैं वो ये काम करते हैं, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ और वो टाइप करते हैं। हमेशा जब भी मैं गया हूँ मुझे असिस्टेंट मिले। बोलने अच्छा तो तुम रिसर्च कैसे करते हो। मैंने कहा मैं तो हाथ से लिखता हूँ, कभी लेट के लिख रहा होता हूँ, कभी उल्टा लेट के लिखता हूँ, कभी खड़े होकर लिखता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, तो मैं तो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा। चकरा गई वो, उसने कहा कि 2013 के अंदर एक ऐसा आदमी जो 3 साल से हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता, तो कैसे फिर तुम सर्वाइव एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बन गए तुम। मैंने कहा भाई मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ ज्यादा। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन दी उसने कहा कि भाई 200 लोग बैठे हुए हैं, पावर पॉइंट के बगैर तुम कैसे इंगेज करोगे उनको। मैंने कहा भाई मैं हार्ट टू हार्ट कॉन्टैक्ट में इंगेज करता हूँ लोगों को, तो लोगों को 20 मिनट का टाइम देते थे, मुझे उन्होंने 1 घंटा 45 मिनट दिए, 1 घंटा 45 मिनट तक इंगेज रखा मैंने उनको। इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं ये मैंने उसको झूठ बोला कि मैं ये इस्तेमाल नहीं करता, मुझे आता है ये इस्तेमाल करना, लेकिन मैं अपना सामान हमेशा हल्का रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप माय बैगेज लाइट, जिसके जितने ज़्यादा स्टेक्स होते हैं ना उसके लिए उतने मसाइल होते हैं, जो हल्का होता है ना वो चीज़ें छोड़ के निकल जाते हैं। अगर आपके पास होता है सामान ज़्यादा तो आपके लिए होता है मसाइल। तो जब मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ सामान वामान कोई ऐसा खास नहीं होता, स्टे लेते हुए जाता हूँ, हर जगह पे रुकता हूँ, खूब घूमता हूँ, लोगों को देखता हूँ, फिर आके बैठ जाता हूँ। फिर अगर मेरे पास ये लैपटॉप हो, ये हो, वो, तो मैं उसको संभालूंगा या देखूंगा, घूमूंगा वहाँ पर। तो बताने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप, हम जो ये समझते हैं ना कि टेक्नोलॉजी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते आदमी, ये ठीक बात नहीं है। दुनिया में जो लोग शिकस्त खाते हैं ना यूरोप से जंगों के अंदर, वो टेक्नोलॉजी की वजह से खाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर होती है, आपकी टेक्नोलॉजी इंफीरियर होती है, आप मार खा जाते हो। हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि उनका रडार के ऊपर वो ये देख रहे थे कि कोई जहाज जो है हमारे अरीब करीब तो नहीं है, तो रडार में आ रहा है कोई जहाज नहीं है, और सामने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है, आंखों से नजर आ रहा है, रडार में नजर नहीं आ रहा, जैमर्स लगे होते हैं जैम कर देता है। तो वो ईरानी था, वो ईरानी कहने लगा यार मैं जो है मर्चेंट नेवी के साथ मैंने काम किया है, रिसर्च की है, मरीन बायोलॉजिस्ट है, तो कह रहा है कि हम खड़े हुए देख रहे हैं ईरानी जहाज के ऊपर खड़े हुए हम देख रहे हैं, रडार में आ रहा है कि कोई जहाज नहीं है, सामने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर जहाज भी खड़े हुए हैं, कुछ नहीं आ रहा सामने। तो जब आप उन्हीं की टेक्नोलॉजी लेके आप जाओगे तो आपकी रूह फना हो जाएगी। तो बताने का मतलब ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करो, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि आप किसी एक चीज़ के ऊपर जब आप ईमान ले आते हैं ना, जो तीसरी दुनिया के जो मजहबी ममालिक हैं, हम लोग चूँकि ईमान पे चलते हैं ना, तो एक ईमान पे चीज़ पे ईमान उठता तो दूसरी चीज़ पे ईमान ले आते हैं। साइंस पे ईमान ले आए आप कि वो हर मसला हल करेगी, वो डेफिनेटली मसला हल करेगी, लेकिन उसके साथ जो आपके पास दूसरे ज़राए उनको तबाह करना ज़रूरी नहीं है, उनको भी रहम खाओ, उन पर भी उनको भी चलने दो, उनकी तौहीन ना करो, शायद बाद में वही तुम्हारा मसला हल कर दे। दुनिया में बहुत सारे दफा एक इल्म जब फेल होता है तो दूसरा इल्म उसका मसला हल करता है, लेकिन जरूरी है कि उस इल्म को हम छोड़ तो दें, हम छोड़ ही नहीं रहे उसको। ज़हीन तरीन लोग जिस इल्म की तरफ रुजू कर लेंगे उसमें तरक्की होने लगती है, और जिसकी तरफ से लोग निकल जाते हैं उसमें जवाल आ जाता है। मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग भी पैदा हुए जिनकी ज़हनी सतह यह थी कि इब्ने सीना जो था वो एक लाइब्रेरी उसके ज़ेर असर थी, लाइब्रेरी में आग लग गई और किताबें जल गईं। खलीफा जो था रोज़ आता था रीडिंग करने के लिए, खलीफा को बहुत सा गुस्सा आया कि किताबें जल गईं। उसने कहा किताबें जल गई, कौन जवाब दे इसका? तो इब्ने सीना ने ये कहा कि आप कागज़ का और कलम का इंतज़ाम करें, मैं रीराइट कर दूंगा। 117 किताबें उसने रीराइट की, दोबारा लिख दी। 117 किताबें हिफ्ज़ थी उसको, कैसा दिमाग होगा उसको? इमाम तैमिया ने अकल और ईमान के ताल्लुक पे, अकल में और ईमान में क्या ताल्लुक है, 17 वॉल्यूम लिखे हैं, 17 वॉल्यूम। कैन यू इमेजिन? आप समझते हैं दो चीजों पे ये अकल होती है? अरे भाई जाके देखो ना आपके लोगों ने क्या लिखा है। इमाम तैमिया ने, कुछ लोग कहते हैं 48 साल की उम्र में इमाम का इंतकाल हुआ है, कुछ लोग कहते हैं 54 ईयर्स की, 55 से ज्यादा उम्र नहीं थी इमाम तैमिया की। इमाम तैमिया ने जितना लिखा है ना वो आप 60 साल तक पढ़ नहीं सकते, जो उन्होंने लिख दिया है ना उसको पढ़ना मुश्किल है। अब आप कहते हैं मैंने इस्लाम पे पढ़ लिया है, अरे इस्लाम पे पढ़ लिया तुमने? एक किताब ने पढ़ी नहीं, इस्लाम मैंने इस्लाम पे पढ़ लिया। अच्छा भाई इस्लाम पे पढ़ लिया, और इस्लाम में हमारे मसाइल का हल भी नहीं है ये न सिर्फ ये कि पढ़ लिया है, उसके नतीजे में ये भी पता चल गया हल नहीं है, अब मैं आगे हूँ कुछ और करने। तो मसला ये है कि भाई जिस चीज़ को आपने नहीं पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके पढ़ो, लेकिन उस पर रहम खाओ, ठीक है भाई? तो अभी इसको यहीं पे रोक लेते हैं। हाँ थैंक यू। आप है ना इसको समराइज करो, सही जैसा जैसा होना सकता है।